और करीम हस्ती के सामने एक उजर पेश किया जाए तो उसे कबूल भी कर लेता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह से बढ़कर उजर को पसंद करने वाला कोई भी नहीं है। ये बुखारी की रिवायत है 7416। बेशक अपनी जगह पे आप पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ इस वक्त आप इसको एंजॉय कीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर अपने भाई का उजर कबूल कर लो अगरचे उजर पेश करने वाला झूठा उजर पेश करे। अल्लाह अकबर, हम तो उसको पकड़ के बदनाम कर दें, झूठ बोलते हैं, हराम खाते हैं और पता नहीं क्या कुछ। तो जब दुनिया में कोई शख्स करीम है, अपने कर्म की वजह से अपने मामलात को सुधारने की कोशिश करता है, तो वो लोगों का प्यारा हो जाता है। तो फिर ज़रा सोचिए, अल करीम कैसे नहीं होगा, बहुत ज़्यादा अता करने वाला। सोचिए ज़रा, ऐसा अता करने वाला किसकी अदाएँ रुकती नहीं है, इसके खजाने फना नहीं होते, और बेबहा फजल करने वाला, ऐसा फजल करने वाला कि बिन मांगे भी फजल करता है, और इसके फजल को मांगने के लिए किसी वसीले और किसी सिफारिश की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये ज़रूर नुक्ता लिखिएगा। दुनिया में तो लोगों तक पहुंचने में वो सीढ़ी ही ख़त्म हो जाती है ना, सहारे ढूंढते रहते हैं। अल्लाह की ज़ात वो हस्ती कि वहां तक पहुंचने के लिए कोई वास्ता और कोई वसीला नहीं चाहिए। ज़रा सा इमेजिन कीजिए, बेबहा फजल करने वाली हस्ती। कभी फल खाए हैं आप? कहते हैं रोज़ खाते हैं माशाल्लाह। कभी आप अंगूरों की नरमी में अल्लाह सुबहाना ताला की करीमी को महसूस कीजिए? कभी स्ट्रॉबेरी कभी काटी हो तो छुरी लाल हो जाती है, मैंगो ज़रा पका हो तो कैसे हिलता। फ्रूट चाट बनाते वक्त आप अल्लाह के इस नाम को महसूस करें। आप देखिए कैसे चीज़ें घुल जाती हैं ना, कैसे हमारे इर्द गिर्द ये मिसालें मौजूद हैं। और हकीकत यह है कि अल्लाह सुबहाना ताला बंदे के साथ मामला करम वाला करता है। जो अल करीम होता है ना, तो वो हर हाल में दुआएं सुनता है। जैसे सूरह गाफिर आयत 60 में आता है, वक़ाला रब्बुकुम उदूनी अस्तजीब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरून अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन। और तुम्हारे रब ने फरमाया कि मुझे पुकारो। देखिए अल करीम है ना, तभी कहता है मुझे पुकारो, किसी और के पास नहीं जाओ, मेरे पास आओ, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। और बेशक वो लोग जो मेरी इबादत से तकब्बुर करते हैं, अन करीब जलील होकर जहन्नुम में दाखिल होंगे। यानी अल करीम वो हस्ती है कि उसको अच्छा लगता है कि लोग उसको पुकारें। तो कहिए, बग़ैर इस्तेहकाक और बग़ैर एहसान जतलाए अता करने वाले को अल करीम कहते हैं। सवाल लिखिए कि फिर उसके करम की क्या अदाएँ हैं, हमें अपनी ज़िंदगी में उसका करम कहाँ कहाँ दिखता है। तो पहली बात देखिए कि इंसान की बेहतरीन शक्लो सूरत, क्या कुछ शक्लें ऐसी नहीं होती कि जिसको देख कर आप देखते ही रह जाते हैं। कभी आईने में भी देख के खुद को कहा करें कि मैं कैसा और कौन हूँ। फिर आप देखिए आपकी अक़ल, आपकी ज़हनी सलाहियतें, इल्म, लिखने पढ़ने की काबिलियत। फिर इस तरह के सूरज चांद सितारे मखलूकात, कायनात का पूरा निज़ाम, ये अल्लाह ताला के करम की दलीलें नहीं है? आपको कायनात में फैला हुआ हुसन देखकर अपना मालिक याद आता है? तो अल करीम है, उसके ऊपर गौर व फिक्र किया करें। और फिर समझिए कि जो खुद करीम है और अल करीम है, उसे बंदे पे भी करम कर दिया इज्जत देकर। कैसे? सूरत बनी इसराइल आयत 70, वलकत करमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्री वल बहरी व रज़क़नाहुम मिन अत्तय्यिबाति व फद्दलनाहुम अला कसीरिम मिम्मन खलकना तफ्तीला। और बिला शिवा यकीनन हमने आदम की औलाद को बहुत इज्जत बख्शी, और इन्हें खुशकी और समंदर में सवार किया, और इन्हें पाकीज़ा चीज़ों से रिस्क दिया, और हमने जो मखलूक पैदा की इसमें से बहुत सों पर इन्हें फजीलत दी, बड़ी फजीलत देना। तो आप देखिए बंदे को इज्जत दी। कभी होता ना, बना के कह दिया जाता, चलो भाग जाओ, बेकार हो, कहाँ से बने हो, नुतफे से पैदा हुए हो, चलो हकीर कीड़ा। तो अस्तगफिरुल्लाह, वलकद करमना बनी आदम, ये करमना लफ्ज़ पे आप प्यार से देखिए कैसे वो है। तो फिर कहिए अल करीम कौन, खुद भी इज्जत वाला और दूसरों को इज्जत देने वाला। लिखिए जरा, दुनिया में ये दो खूबियां अगर आप में जमा हो गई ना, तो आपकी इज्जत कभी कोई कम नहीं करेगा। होता क्या कि जरा चार लोग आपकी इज्जत करने लगे ना, तो आप दूसरों को जानवर समझते हैं, कीड़े मकोड़े समझते हैं। कुर्सी पे बैठ जाए, चार पैसे आ जाए, बड़ी गाड़ी पे आ जाए, मासियां दो चार रख ले, जरा टोन तो देखिए। तो आज के बाद तौबा कीजिए। आप जितनी दुनिया में इज्जत पा लें, पैसे के बल पे, शक्ल के बल पे, गाड़ी कोठी बंगला नौकरों की फौज, क्योंकि इल्म वाले ये नहीं कर सकते, मैं इल्म की बात नहीं करती इधर। आपको दुनिया की कोई चीज़ दे दे अल्लाह, फिर दूसरों को इंसान समझिए। और फिर याद रखिए कि अल्लाह ने इज्जत दी किस किस को। सबसे पहले देखिए कुरान, कुराने मजीद भी करीम है, और बाकी सहीफे क्यों, इन्नहू लकुरआनुन करीम। पढ़ते हैं सूरत वाकया में, ये तो बड़े करम वाला कुरान है। फिर अल्लाह ताला के फरिश्ते हैं, किरामन कातिबीन, फिर अम्बिया कराम को अल्लाह ने इज़्ज़त दी और अल्लाह से डरने वाले लोगों को इज़्ज़त दी। अल्लाह ताला क्या फरमा रहे, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाही अतकाकुम, मुत्तकी को अल्लाह ने इज़्ज़त दी। फिर और किसको इज़्ज़त दी, अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को इज़्ज़त दी फरिश्तों से सजदा करवा के। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को पहले बीमारी दी, फिर सब्र की तौफीक दी, फिर ऊपर हम पढ़कर आए कैसे उनकी तारीफें की नियम अलब कह के, फिर दोबारा सेहत के साथ बच्चे से दे के इज्जत और नियमतें दे दी। है ना अल करीम, कभी ज़िंदगी में किसी मोड़ पे स्टक हो जाए तो घबराइए नहीं, आगे बहुत दरवाजे खुलेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि अल करीम है आपके साथ। फिर आप देखिए हज़रत यूसुफ को कैसे बाप की गोद से निकाल कर कुएं में फेंका कर, फिर अजीज़ मिस्र के घर में लाकर जेल की कोठरियों में डालकर मिस्र के तख्त पे बिठा दिया। इज्जत दी अल्लाह ने, अल करीम ने यूसुफ को इज्जत दी मिस्र में और वजीर बना दिया और हुकूमत दे दी। और किस तरह इज्जत दी, सूरत आल इमरान 33 देख लीजिए, इन्नल्लाह हस्तफा आदम व नूहन व आल इब्राहिम व आल इमरान अलल आलमीन, बेशक अल्लाह ताला ने आदम और नूह को और इब्राहिम के घराने को और इमरान के घराने को जहानों पर चुन लिया। इस आयत का तो नाम ही लिखा हुआ है मैंने अपने पास, चुने हुए लोग, चोजन पीपल। तो अल करीम खुद ही अल करीम नहीं है, दूसरों को भी करम वाला बनाता है। तो आप कह सकते हैं कि अल करीम वो है जो हमेशा खैर और भलाई को तकसीम करने वाला, उसके पास जो चीज़ें होती हैं वो सेंध सेंध के नहीं रखता, वो अपने पास नहीं रखता, वो लोगों को बांटता है। तभी तो उसके पास जो चीज़ें हैं वो कभी कम नहीं होती, उसके मुकाबले का तो कोई करीम हो ही नहीं सकता। तो आप कह सकते हैं कि अल करीम कौन है, किसकी खैर और बरकत कभी नहीं रुकती, कॉन्स्टेंट सप्लाई, कंटिन्यूस नेमते और एहसानात बगैर इवज़ और बगैर सबब के देने वाला, मुस्तक और गैर मुस्तक सबको देकर खुश होने वाला। हम दे भी दें तो खुश नहीं होते, काले को गोरे को अमीर को गरीब को काफिर को मोमिन को सबको अता फरमाने वाला। फिर जिन्नो इंस चरिंद परिंद सब मखलूकात को नवाजने वाला है अल करीम। अहदीस सुनिए, सिलसिला सहीहा की रिवायत है, 4 दफ़ा 2 लिख लीजिए, 2222, 2222 नंबर भी याद रहेगा। अब्दुल्ला बिन अमर से रिवायत, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह ताला अपने बंदों को नफ़ा पहुंचाने के लिए कुछ लोगों को बतौर खास नेमतें अता करता है। अगर वो खर्च करते रहें तो वो नेमतें बरकरार रहती हैं, और अगर वो सदका खैरात करने से रुक जाएं तो वो इनसे सल्ब करके दूसरों को अता करता है। डर लगा सुनकर, तो अल्लाह की नेमतों को अल्लाह के बंदों के साथ शेयर किया करें, वरना आपकी रुक जाएंगी, जैसे क्लॉग हो जाता है, गटर में पानी बंद हो जाता है ना। और अल करीम का खास करम कि उसने इंसान को अहसनी तकवीम अता किया। कैसे, लकद खलकनल इंसान नफी अहसनी तकवीम, कैसे उसने इंसान को दो रास्ते दिखाए, वहदई ना हुन्ना जुदैन, एक नेकी का रास्ता और एक बदी का रास्ता। इंसान को जानवर बना के नहीं छोड़ दिया कि वो गुना भी करे, हराम भी करे, हलाल को भी ना केयर करे, नहीं, नेकी बदी दो अलग रास्ते हैं, इंसान की इज्जत है इसमें। फिर उसने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया, कुरान सिखाया, बोलना सिखाया, और रहमान अल्लमल कुरान, खलकल इंसान, अल्लमहुल बयान, बेहद रहम वाला, ये कुरान सिखाया, इंसान को पैदा किया, बात करना सिखाया। सूरत रहमान से कितनी मोहब्बत करते हैं ना लोग, तो इसमें अल्लाह के इस करम को महसूस कीजिए। और अगर हम कुरान पाक की इन आयतों को जो देखा तो इसको सामने रखते हुए जरा से इस नाम पे गौर व फिक्र करिए। एक तो दुआ कीजिए कि अल्लाहुम्मा जल कुरान रबी कुलूबिना, ए अल करीम इस कुरान को हमारे दिलों की बहार बना दे, हमारे दिलों की स्प्रिंग ऑफ आवर हार्ट, ठंडक, दिल की खूबसूरती। और आप देखिए कि कुरान पाक में 3 बार ये आयतें जो आईं, एक तो सूरत मोमिनून की 116 में भी आप देख लीजिए, यहाँ अर्श को बड़ा कहा गया है, बहुत बड़ी बात है, ये आयत पहले नहीं की, आप नोट करें, अल मोमिनून 116, फताअल्लाहुल मलिकुल हक ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल करीम, पस बालाओ बरतर है अल्लाह बादशाह हकीकी, कोई जात उसके सिवा नहीं, मालिक अर्शे बुजुर्ग का, यानी खुद भी करीम, कुरान भी करीम और उसका अर्श भी करीम है। फिर इसी तरह आप देखिए कि जब लफ्ज़ अल करीम को गनी और करीम के नाम पर देखते हैं तो सूरत नहल आयत 40, यानी ये दो नाम इकट्ठे आ रहे हैं बल्कि 3, कैसे, वमन शकर फइन्नमा यशकुरु लिनफ्सिही, और जिसने शुक्र किया तो वह अपने ही लिए शुक्र करता है, वमन कफर फइन्ना रब्बी गनीयुन करीम, 3 लफ्ज हैं देखिएगा, और जिसने नाशुक्री की तो यकीनन मेरा रब बहुत बेपरवाह बहुत करम वाला है, यानी करोगे तो अपने लिए करोगे, नहीं करोगे तो आपका अपना ही नुकसान होगा, उसको तुम्हारी जरूरत नहीं। लेकिन बात यह है कि इंसान रब्बे करीम की तरफ से धोखे में है। किसने बताया आपको? सूरह इन्फितार की आयत 6 ने बताया। लिखिए, क्या मैं अल्लाह की तरफ से धोखे में तो नहीं हूँ? या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, ए इंसान, किस चीज़ ने तुझे अपने इस रब्बे करीम की तरफ से धोखे में डाल दिए? क्या धोखा है इंसान को कि मेरा रब मुझसे राजी नहीं होगा, मेरे रब ने मुझे बड़ी मुश्किलों में डाल दिया, दुनिया में मेरे साथ ज्यादती की, और मैं अपने रब के साथ लग जाऊंगा तो मेरी इज्जत नहीं होगी। यानी बुरे गुमान ना किया करो अल्लाह के साथ। और फिर एक जहन्नमी का जिक्र, सूरह दुखान आयत 49 में, जुक चख इन्नका अंतल अजीजुल करीम। चख इसका मजा, बड़ा जबरदस्त इज्जतदार आदमी है, यानी तू बड़ा गालिब बनता था। यानी ये कह लीजिए कि शौर को बेदार करने के लिए अंदाज है कि जहन्नम में डालकर फिर उसको बताया भी जाएगा कि तू बड़ी इज्जत वाला बनता था, तेरी इज्जत का मसला, तेरी नाक ना कट जाए, तेरी पेशानी का मसला। आज दुनिया में कितने गुना इंसान सिर्फ इस सोच से करता है कि माशरे में इज्जत रह जाए, हालांकि कोई नहीं कटती। आज सुबह भी हमने बहुत खूबसूरत आयत की है अलाराफ में, पूरा वक्त तकरीबन एक ही आयत हुई और आखिर में एक छोटी सी, दो आयतें हैं टोटल, 46 47 होगी आई थिंक सो, लिख लें, कभी सुन लीजिएगा आराफ के बारे में। और उसमें हमने क्या कुछ नहीं आज पढ़ दिया, हसरतें, यास, वहां जाके मारे जाएंगे, सिर्फ एक नहीं की, और 5 वजूहत बताई हैं। बिल्कुल शुरू में जाके नोट कर ले टाइम, कि बंदा क्यों एक नेकी की भी कदर नहीं करता, और वहां उसे एक नेकी की कमी जन्नत से रोके हुए है, जहन्नम में जा नहीं पा रहे, आराफ पे वेटिंग लिस्ट में खड़े हैं आप। अल्लाह हमारे साथ आसान मामले करे। कुछ अहादीस देखिए अल करीम के बारे में। पहली बात यह कि दुआओं को कबूल करने वाला रब है, ये रिवायत ऊपर शेयर की है, इसका रेफरेंस ले लीजिए अबू दाऊद 1488 सलमान रजी अल्लाह अन्हो से, कि तुम्हारा रब बहुत बाहया और करीम है। ऊपर मैंने आपको इसकी अरबिक सुना दी है। यानी अल्लाह इस हदीस में बयान करते हैं कि जब बंदा हाथ उठाता है तो अल्लाह को शर्म आती है कि उसको खाली लौटाए। फिर इसी तरह अल्लाह के नबी रमज़ान में खूब सखावत करते थे, ये खूबसूरत बड़े बड़े दस्तरखानों को देखकर नियत कर लीजिए इस साल हमने भी खूब इफ्तारियाँ करानी है। लेकिन उनकी कि जिनके पास है नहीं है, अपने नाम पे तो पता नहीं इस साल क्या होना है, लेकिन अल्लाह के नाम पर खिलाइए अल्लाह के बंदों को। और रिवायत ले लीजिए सही बुखारी की हदीस नंबर 6 है, इब्ने अब्बास से रावी हैं कि इब्ने अब्बास फरमाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा जव्वाद यानी सखी थे, करीम का लफ्ज़ आता है, और रमज़ान में दूसरे औकात के मुकाबले में। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपसे मिलते तो आप बहुत जूदो करम फरमाते, जिब्राइल अलैहिस्सलाम रमज़ान की हर रात में आपसे मुलाकात करते और आपके साथ कुरान का दौरा करते। गरज़ अल्लाह के नबी लोगों को भलाई पहुंचाने में बारिश लाने वाली हवा से भी ज़्यादा जूदो करम फरमाया करते थे। और इस पे कॉल है कि अल्लाह के नबी की ये सखावत कुरान की थी, यानी कसरत से कुरान पढ़ते थे। फिर इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंसार और महाजरीन के लिए फजलो करम की एक खसूसी दुआ है। कैसे? अनस बिन मालिक कहते हैं कि आपने फरमाया कि अंसार गजवे खंदक के मौके पर खंदक खोदते और ये शेर पढ़ते, हम वो हैं जिन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिहाद पर बैत की है जब तक हमारी जान में जान है। अल्लज़ीन युबायून मोहम्मद, हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना तो इसके जवाब में यूं फरमाया, अल्लाहुम्मा ला ईशा इल्ला ईशल आखिरा, ए अल्लाह आखरत की ज़िंदगी के सिवा और कोई ज़िंदगी हकीकी नहीं, बस मुहाजरीन और अंसार पर अपना फजलो करम फरमा। ये बुखारी की रिवायत है 3796। क्या पता चला कि जो लोग आपके साथ दीन के काम में मुआविन हैं वो अंसारुल्लाह हैं, वो जिम्मेदारान हैं, आप दिल खोल के उनको दुआएं दें। ये प्यारे नबी की सुन्नत है। साहबा को आपसे पैसे थोड़ी चाहिए था, याद रखिए पैसे लेने वाले काम नहीं करते, काम करने वालों को पैसे बाद में मिल जाएं और बात है, लेकिन पैसे सेट करके काम करने वाले कभी काम नहीं करते। ये सुन्नत तरीका है, बरकत भी इसी की है, यही बात इधर है। तो अल्लाह के नबी फिर तारीफों से और दुआओं से उनको कमी पूरी करते थे, और मोमिन को तो जो करना है अपने लिए करना है। फिर अल करीम कौन? कि दुआ में जल्दी अल्लाह के करम से दूरी, यानी कोई ये कह दे ना मेरी दुआ नहीं कबूल हो रही तो गोया कि उसने अल करीम की शान को समझा ही नहीं है। और यह हदीस आप बहुत दफ़ा सुन चुके हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है 6936, अबू हुरैरा रावी है कि अल्लाह ताला हमेशा बंदे की दुआ कबूल करता है जब तक कि वो गुना या नाता तोड़ने यानी रिश्ते तोड़ने की दुआ ना करे और जल्दी ना करे। लोगों ने कहा अल्लाह के रसूल जल्दी के क्या मानी है, तो आपने फरमाया कि यूं कहे कि मैंने दुआ की, मैं नहीं समझता कि वो कबूल हो, फिर नाउम्मीद हो जाए और दुआ छोड़ दे, ये मालिक को नागवार होता है, फिर वो कबूल नहीं करता। बंदे को चाहिए कि अपने मालिक से हमेशा फजलो करम की उम्मीद रखे। अगर दुआ दुनिया में कबूल ना हुई तो आखिरत में उसका सिला मिलेगा, है ना? कितना प्यारा करम करने रख लेता है आपकी चीज़ें कि फिर कभी दूंगा। उसको पता है बंदे पे मुश्किल वक्त अभी बड़े आने हैं आखिरत में, पुल सरात भी है, अभी बरजख भी है, और अभी हिसाब किताब भी है, अभी कंतरा भी है। फरिश्तो रख दो इसकी वो दुआएं, वहां जाके सुनूंगा। वहां बंदा ख्वाहिश करेगा कि काश मेरी दुनिया में कोई दुआ कबूल ना होती। फिर इसी तरह जहन्नुम की अल करीम के करम की कसम, कैसे? रिवायत है सही मुस्लिम 7179, अनस बिन मालिक की रावी है इसके। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हमेशा जहन्नुम में लोग डाले जाएंगे और वो यही कहेगी, और कुछ है? हल में मजीद कुरान में सूरह कौफ में पढ़ ले, यहाँ तक कि अल्लाह परवरदिगार इज्जत वाला अपना कदम इसमें रख देगा, तब तो सिमट कर एक में एक रह जाएगी और कहने लगेगी, बस बस कत्तुन कत्तुन, बस बस एनफ एनफ, कसम तेरी इज्जत और तेरे करम की, और हमेशा जन्नत में खाली जगह रहेगी, यहाँ तक कि अल्लाह ताला इसके लिए एक मखलूक को पैदा करेगा और इसको इस जगह में रखेगा। यानी उसका करम देखिए कि जन्नत भी इतनी बड़ी कि सारे आ जाएंगे फिर भी जगह होगी, कोई ये ना कहे क्या मेरे लिए जगह ही नहीं बची, और जहन्नुम भी इतनी बड़ी है कि सारे सरकस चले भी गए फिर भी उसमें जगह मौजूद है, तो उसके खजाने बहुत हैं। और दुआएं देख लें अगर आप अल्लाह के इस नाम से मुतल्लिक और अज़कार, तो एक दुआ आपको इसमें आज़म के जरिए दुआ के तौर पे मिलेगी, तिर्मिज़ी में 3544। हज़रत अनस कहते हैं कि अल्लाह के नबी मस्जिद में आए, एक शख्स नमाज़ पढ़ रहा था और दुआ मांग रहा था, कह रहा था, अल्लाहुम्मा ला इलाहा इल्ला अंतल मन्नान उबदीउ समावाति वल अर्दी या जल जलाली वल इकराम, ए अल्लाह तेरे सिवा कोई और माबूदे बरहक नहीं, तू ही एहसान करने वाला, तू ही आसमानों और जमीन का बनाने और पैदा करने वाला, ए बड़ाई वाले और कर्म करने वाले मेरी दुआ कबूल फरमा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, क्या तुम जानते हो इसने किस चीज की दुआ की है? यानी ये भी बड़ा अच्छा अंदाज है किसी कुमाइल करने का और पुकारने का। फिर खुद ही फरमाया कि इसने अल्लाह से इसके इस इस्मे आज़म के जरिए दुआ की है कि जब भी इसके जरिए से दुआ की जाएगी अल्लाह ताला इसे कबूल करेगा, और जब भी इसके जरिए से कोई चीज़ मांगी जाएगी तो अल्लाह ताला इसको अता करेगा। तो ये दुआ आप भी याद कीजिए, और अल्हम्दुलिल्लाह अब आपको दुआएं बहुत सारी याद हो भी रही हैं। फिर एक और दुआ है इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से, अल्लाह के नबी सख्त तकलीफ़ के वक्त ये दुआ मांगा करते थे, अपने पीछे भी एक नाम के साथ ये याद की थी, ला इलाहा इल्लल्लाहुल अज़ीमुल करीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुस समावाति व रब्बुल अर्दी व रब्बुल अर्शिल करीम। अल्लाह हलीम बुर्दबार और करीम, करम वाले के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं है, पाकी बयान करता हूँ अर्शे अजीम के रब अल्लाह की, पाकी बयान करता हूँ सातों आसमानों और अर्शे करीम के रब की। और ये दुआ के अल्फाज आपको सुनन इब्ने माजा में 3883 में मिल सकते हैं, वहां से ओरिजिनली भी देख सकते हैं। इसी तरह एक और दुआ वितर के बाद की दुआओं में से सुनन इब्ने माजा 1179 में अली बिन अबी तालिब से ये रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वितर के आखिर में ये दुआ पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी औऊज़ु बिरिदाक मिन सखतिका व औऊज़ु बिमुआफातिक मिन उकूबतिका व औऊज़ु बिका मिनका ला उख्सी सनान अलैक अंत कमस नहीं ताला नफसिक, ए अल्लाह अब जरा सा रिलैक्स होके सोचे, ए अल्लाह मैं तेरी रजामंदी के जरिए तेरी नाराजगी से पनाह मांगता हूँ, और तेरी माफी के जरिए तेरी सजाओं से पनाह मांगता हूँ, और तेरे रहमो करम के जरिए तेरे गैज़ो गज़ब से पनाह मांगता हूँ। मैं तेरी हमदो सना को शुमार कर नहीं सकता, तू वैसा ही है जैसा कि तूने खुद अपनी तारीफ की है। ये तो कहते हैं हैंड्स अप वाली बात कि मैं हाथ उठा रहा हूँ कि मैं अल्लाह की तारीफ बयान नहीं कर सकता, तो क्या पता चला कि अल करीम का करम बहुत है। और आप इसको सुनते जाएंगे और अपने दिलों को नरम कीजिए, अल मौइज़तिल हसना, क्या करूँ मैं इसको सुनकर? पहली बात तो यह है कि हमेशा अल करीम से उसका फजलो करम मांगिए, या हय्यू या क़य्यूम बिरहमतिका इस्तगीस, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फ़द्लिकल अज़ीम। फिर इसी तरह लोगों को आसानियाँ दीजिए, ज़िंदगी में बहुत सारे लोग हैं जो मुंतज़िर हैं कि आप उनके साथ करम का मामला कीजिए, दूसरों के साथ नरमी और करम वाला मामला करें, अपने इर्द गिर्द लोगों के लिए सुकून का बायस बने, और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने दिल को बड़ा कर लें। अल करीम बनेंगे तो उसका एक शर्त है कि दुनिया की मोहब्बत दिल से निकाल दें, ये दुनिया की मोहब्बत दिल का क्लॉग है, ये गटर पाइप को बंद करने वाली चीज़ है, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया था सिलसिले सहीहा की रिवायत है 2954, अगर आदम के बेटे की माल या सोने की दो वादियाँ हों तो वो तीसरी वादी को ज़रूर तलाश करेगा और आदम के बेटे का पेट मट्टी ही भरेगी, यानी कब्र की थोड़ी सी मट्टी जो मुंह में जाती है। और अल्लाह ताला इसी पर नज़रे करम करता है जिसने इसकी तरफ रजू किया। तो क्या आपका मेरा रजू इल्लाह है तो अल्हम्दुलिल्लाह करम ज़रूर होगा। आप ज़रा से सोने की डलियों को जहन में लाइए, तसव्वुर में लाइए, सोने चांदी को खाया जाता है। सर में दर्द हो तो मलें सर पे, सर दर्द ठीक होता है। तो क्या आप और मैं सिर्फ इन चीज़ों के पीछे लेके अपने आप को चलेंगे? इसी तरह हमें इन सारी चीज़ों को सुनते, पढ़ते, बोलते, देखते वक्त दिल से माल और सोने चांदी की मोहब्बत को निकालना है। बोलिए अल्लाह तू निकाल दे, फिर इस तरह अपने अंदर करीमाना सिफात पैदा करने की कोशिश करेंगे। बुखल से परहेज़ करनी है, सखावत और फैयाजी से काम लेना है, और हर छोटी बड़ी चीज़ सिर्फ अल करीम से मांगिए। सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये होना चाहिए क्योंकि हमें अपने आप को अल्लाह की नज़रों में सुरखरू करना है। याद रखिए कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो अल्लाह ताला के मामलात को सही समझ नहीं पाते। आपको जब अल्लाह ताला के अल करीम होने का यकीन आ जाता है ना, तो आप बिल्कुल फिर अपना आप उसके आगे डाल देते हैं, फिर आप बिल्कुल उसको बड़ा समझते हैं, फिर आपको किसी और की ऐसे लगता है कि ज़रूरत ही नहीं रहती। किस तरीके से आप अपने रब के साथ मामला करते हैं, कैसी बड़ी बातें हैं, किस तरीके से अल्लाह सुबहाना तला अपने बंदे को बताता है, क्या वो वाक़यात हैं, वो क्या चीज़ें हैं, गुनाहगारों की भी सुनता है। इसके ऊपर बहुत सारे वाक़यात भी हैं सीरत में। किस तरीके से अल्लाह ताला वो लोग जो दुनिया में गाने बजाने का काम करते हैं, एक वाक़या बड़ा तवील कि कैसे एक गुनाहगार को अल्लाह ने किस बात पे बख्श दिया। बस आप तो ये कहिए कि कसीरुल जूदी वल अता इल्लज़ी ला यन्फदु अताहु वला तफनी खज़ाइनुहु। बहुत ज़्यादा अता करने वाला, वो जब देता है वो छट्टा मार के देता है, उसको नहीं पता गुनाहगार को जा रहा है, शराबी को जा रहा है, पापी को जा रहा है, जानी को। उसकी अताएं रुकती नहीं, खजाने खत्म ही नहीं होते, फना ही नहीं होते। और इसी तरह से अल्लाह के इस नाम के बारे में कहते हैं अल मुतफद्दिलु बिला मसलते वला वसीलते। इतनी बड़ी हस्ती है वो, तो जो मांगिए मांगिए, मत सोचा करें बड़े गुनाहगार हैं। वो बड़ी हस्ती है, वो आपको बहुत कुछ देता है और उसके पास है भी बहुत कुछ। इसी तरह अर्श को उठाने वाले फरिश्ते जिनको हाँ मिलाने अर्श कहते हैं, इनका तذکرہ आखिरी सूरतों में बहुत आता है, 25-26वें पारे में सूरह ज़ुमर और इस तरह सूरह मोमिन में। तो उसके बारे में आता है कि चार फरिश्ते अपने रब की तस्बीह इस तरह बयान करते हैं, सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका लकल हम्दु अला अफ्विका बाद कुदरतिका। पाकी बयान करते हैं हम आपकी तारीफ के साथ, आप ही के लिए तारीफ है इस बात पर भी कि आप सजा देने पर मुकम्मल कादिर होने के बावजूद माफ फरमा देते हैं। जब फरिश्ते इस बात को मान रहे हैं तो फिर आप मैं क्यों ना माने। और चार फरिश्ते क्या कहते हैं, सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका लकल हम्दु अला हिल्मिका बादा इल्मिका। पाकी बयान करते हैं आपकी तारीफ के साथ कि आप ही के लिए सारी तारीफें हैं इस बात पर के बावजूद गुनाहों का इल्म होने के आप बुर्दबारी और दरगुजर का मामला फरमाते हैं। जी आप मैं तो नहीं जानते ना लोगों को, लेकिन अल्लाह को पता उसके बंदे। तो कभी बड़े से बड़े गुनाहगार के बारे में भी आप ऐसी बातें ना सोचा करें कि इसको नहीं कुछ मिलना। क्या पता आपके अंदर तकब्बुर आ जाए और अल्लाह ताला किसी गुनाहगार की शर्मिंदगी और उसके लिए को बहाना बनाकर उस पर अपना करम कर दे। हमेशा अपने रब के साथ अच्छा अच्छा मामला रखें, तकसीम करने वाले बने, शेयरिंग इज केयरिंग। नहीं खत्म होगा, आपके पास बहुत है। लोगों को दीजिए, रिश्तेदारों को दीजिए, गरीबों को, अमीरों को प्यार दीजिए, वक्त दीजिए, मशवरे दीजिए। लोगों के रिश्ते अगर खालिस नीयत के साथ करवा सकते हैं करा दें, किसी को जॉब मिल सकती है दिलवा दें, किसी को कोई किराए पे कोई चीज़ देनी है दिलवा दीजिए। आप जब तक अल्लाह ताला के साथ अपने इस ताल्लुक को महसूस नहीं करेंगे, जब वो इतनी बड़ी हस्ती होकर रात दिन आपके लिए कहता है कि वाइजा साला का इबादी अन्नी फनी करीब उजीब उदावत दाइजादान, तो आप क्यों इतने बिजी हैं, आप क्यों इतने मसरूफ हैं? तो याद रखिए कि अल करीम के साथ ताल्लुक जुड़ने के बाद बंदे का ज़र्फ़ बहुत खुल जाता है, फिर इंसान वाकई इंसानियत के लिए एक रहमत की बारिश बनता है। आप अपना आराम कम कीजिए, अपनी आसाइश कम कीजिए, अपना वक्त दूसरों को दीजिए। और आप अगर करीम को अल मुकरिम के मानों से कहें ना कि अल मुकरिम इज्जत देने वाला, तो आप भी लोगों को इज्जत देंगे। जब अल्लाह किसी को इज्जत देना चाहता है वो जिल्लत के गढ़ों में भी अजीज होता है। आप दुआ कनूत में पढ़ते हैं कि जिसको अल्लाह तू इज्जत दे उसको कोई जलील नहीं कर सकता, और जिसको तू जिल्लत दे वो कोई इज्जत नहीं उसको दे सकता। अदई लाख बुरा चाहे पर क्या होता है, वही होता है जो अल्लाह चाहता है। कैसे लोगों ने यूसुफ को कैद खाने में डाला, अल्लाह ने इज्जत दे के उनको ऊपर कर दिया, اور اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے، لکھے سورت حج 18، وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِم، اور جس کو اللہ ذلیل کر دے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ کبھی کسی غریب فقیر مسکین کو کچھ نہ کہیے، آپ کو نہیں پتا وہ ان میں سے ہو کہ جن کی اللہ کے اتنی طاقت ہے یا اللہ کے اتنا مقام ہے کہ وہ قسم بھی کھا لے تو اللہ ان کا معاملہ سچ کرتا ہے۔ اور ایک روایت آتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ، چھوٹی بڑی حاجات آپ سے مانگتے ہوئے مجھے شرمندگی ہوتی ہے، تو اللہ نے وحی بھیجی کہ یا موسیٰ لا تسل غیری وسلنی حتی ملحا اجینی کا وعلی فشاتی کا، اے موسیٰ میرے علاوہ کسی اور سے مت مانگ، یہاں تک کہ اپنے کھانے کا نمک اور اپنے چوپایوں کا چارہ بھی مجھے سے مانگو۔ تو بات یہ کہ الکریم صاحب کن فیکون ہے، کہتے ہیں کہ اس کا معاملہ تو کن ہے، کاف اور نون کے درمیان۔ کیا ہے کاف اور نون کے درمیان میں پڑھ کر دیکھ لیجئے، جب وہ کسی کام کے ہونے کا فیصلہ کرتا ہے ہو جا وہ ہو جاتا ہے، چھوٹا بڑا کام اس کے لیے بہت آسان ہے، چٹکی بجاتے میں ہوتا ہے، وعدے پورے کرتا ہے، وہ ساری باتوں کو کروا دیتا ہے، تو پھر آپ کو مجھے اللہ کے ساتھ ہمیشہ اچھا معاملہ رکھنا ہے۔ اور سچ بتاؤں آخری باتوں میں سے ایک بات، یہ جو جنت ہے نا، یہ بھی الکریم کے کرم کا ایک نتیجہ ہے، کیونکہ آپ نے ایک تعریف سنی ہے نا کہ وہ ذات جو اپنے بندوں کو ان کی چاہت اور تمناؤں سے زیادہ دیتا ہے، اس کی عطائیں بندوں کے وہم و گمان سے بالا تر ہے۔ اب دنیا میں تو آپ کو ایسا بہت دفعہ ملا، تو جنت کے لیے وہ خود کہتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ عادت تلی وادی الصالحین مالن مال عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی جنت تیار کی ہے جس کی نعمتیں، ذرا امیجن کریں، آنکھیں بند کریں، نہ کسی آنکھ نے دیکھی اور نہ ہی کسی کان نے ان کا تذکرہ سنا اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں ان کا خیال گزرا۔ اور کا یقین نہ آئے تو پڑھ لو سورت سجدہ کی آیت، فلا تعلم نفس ما اخفی لہم من قرات اعین، تو جیسے وہ بن مانگے بن چاہت کے دنیا میں دیتا ہے نا، ایسی آخرت میں بھی دے گا، تو غیر مرئی طور پہ وہ آپ کو دینے والا ہے۔ اس کے ساتھ نمک بھی مانگنا تو اس سے مانگے، پیار محبت کے ساتھ دلوں کو جوڑیے، اور جتنا زیادہ وہ آپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا، آپ کا ضرور اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ اچھا ہونا چاہیے۔ حسن بصری ایک بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک نوجوان کا والد فوت ہو گیا، کوئی اس کے جنازے میں شامل نہ ہوا، وہ اپنے باپ کی میت کو اکیلے ہی جیسے تیسے کھینچتا ہوا صحرا کی طرف لے گیا تاکہ اس کو دفن کر سکے۔ وہاں پر ایک چرواہا اپنی بکریاں چرا رہا تھا، چرواہے نے اس نوجوان کو دیکھا، اس کے قریب آیا، کہنے لگا لوگ کدھر ہیں، تو اپنے باپ کو اکیلے کیسے دفن کرے گا؟ بیٹے نے سوچا کہ وہ اپنے باپ کو رسوا نہ کرے، کیونکہ اس کے کرتوت اچھے نہیں تھے جس کی وجہ سے کوئی اس کے باپ کا جنازہ نہ پڑھنے آیا۔ خیر جواباً وہ یہ لفظ دہراتا رہا، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور قبر کھودتا رہا۔ چرواہا سمجھ گیا، خیر اس نے اس کی تدفین میں مدد کی، اس کو دفن کر چکے عرابی نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے، جو چرواہا تھا، دیر تک دعا کرتا رہا، پھر اس نے اس نوجوان کو وہیں پر چھوڑا اور اپنی بکریوں کے ساتھ چلا گیا۔ رات کو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو خواب دکھایا کہ اپنے باپ کو دیکھا جو بڑا خوش ہے اور اعلیٰ فردوس میں، کہنے لگا حیرانی اور تعجب سے کہ اے میرے باپ، آپ کو یہ مرتبہ کیسے ملا؟ تو اس نے جواب دیا کہ عرابی، یعنی اس چرواہے کی دعا سے۔ صبح ہوئی تو وہ نوجوان اس چرواہے کی تلاش میں نکلا صحرا میں، جگہ جگہ تلاش کیا نہ ملا، سارا دن گزر گینڈ پہ مل گیا، اس کی چادر پکڑ لی، کہنے لگا بتا، تجھے قسم دیتا ہوں کہ تو نے میرے باپ کی قبر پر کیا دعا مانگی تھی؟ تو عرابی کا جواب سنیے، اے میرے بیٹے، میں نے ایک ذلیل عاجز اور ذلیل بندے کی طرح اللہ کو پکارا، یعنی خود کو بڑا عاجز کیا، پھر میں نے اس سے کہا ہے اللہ میں کریم ہوں کہ یہ مہمان صحرا میں میت کی شکل میں میرے پاس آیا اور میں اس کو جانتا تک نہ تھا، تو میں نے اس کی مہمان نوازی کی، یعنی اس کے دفن میں مدد کی، دعا کی، تو اللہ تو اکرم الاکرمین ہے، یہ سال میں تیرے پاس جا رہا ہے کہ نہ اس کے ساتھ اولاد ہے، نہ اس کے اس مال ہے، نہ اس کے سوال سالے کی کثرت ہے، لیکن اس کا تیرے ساتھ صدق العہد ہے، یعنی لا الہ الا اللہ تو پڑھتا ہی تھا نا، تو اے اکرم الاکرمین ہستی اس عہد کی لاج رکھ لے اور اس کو معاف کر دے۔ تو اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ تو مت بڑے بڑے نیک لوگوں کی دعاؤں پہ رہے، بعض دفعہ سیدھے سادھے لوگوں کی دعا بھی لگ جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کے اندر اپنی روح پھونک کر خود کہتا ہے کہ میں نے بندے کو عزت دی، تو پھر مرنے کے بعد اس بندے کے اوپر کیوں نہیں؟ کبھی کسی کے بارے میں کبھی برا نہ کہے، کوئی گویا ہے، کوئی اچھا کرتا، ایون جسم فروشی کرنے والے، شرابی، بھنگی، چرسی، مت برا کہیے، آپ کو اللہ نے مجھے کیا بنا دیا، اتنی بڑی عزت دے دی، एक रेंगने वाला कीड़ा बना देता, हकीर जानवर बना देता, सर उठाकर जीने वाला बनाया, कोई झुकी हुई कमर वाला जानवर बनाता, कीड़ा मक्खी मच्छर मेंढक कुछ भी बना देता। फिर शऊर दिया, अकल दिया, कलम पकड़ना सिखाया, सुई पकड़नी सिखाई। हम ग्लास थाम लेते हैं, हमें प्लेट को पकड़ने का तरीका, अपने जिस्म पे गौर कीजिए। अहसनी तकवीम पे दिया तो इस जिस्म को क्याम रुकू और सजदों में उसके सामने झुका दीजिए। ये है उसका हक। जितना ज्यादा अपने रब के साथ अच्छा मामला करेंगे, दूसरों के साथ इज्जत का मामला करेंगे और भटक जाने वाले पलट कर ना आए, तो फिर अल्लाह का वादा कि सुम्मा रदत ना हो असफला साफिलीन। तो अपनी इज्जत पहचानिए, गुनाह में पड़ना, गलत चीजों में पड़ना, अपनी तौहीन करना। अल्लाह ने आपको जो दिया है उसको पाकर आप भी दूसरों को दीजिए। और बुखारी की रिवायत पे बात को बुरा करती हूँ कि अल्लाह ने फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा ने कहा कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो शख्स अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो अपने मेहमान की इज्जत करे। तो इसे कराबी ने एक मेहमान की इज्जत की ना सेहरा में आए हुए, जो मुर्दा था तो क्या हुआ। तो आप भी कीजिए, मत कहा करे मेहमान आ गए, हाय मेहमान आ गया, हाय सब खा गया, कितना पकाना पड़ेगा, हाय सुबह से किचन में, मत पकाइए। कौन कहता पकाए, को भूखा आता है आपके घर, कोई फाकों में से उठ के आया है, जो रोटी सालन ने रख दीजिए, प्यार से इज्जत से सलीके से खिला दीजिए। तो लिखिए अपने लिए मेहमान की इज्जत कीजिए। जो शख्स अल्लाह और आखरत पर ईमान रखता है इसे चाहिए कि सिला रहमी करे, और जो इस पे आखरत पर ईमान रखी है तो वो अच्छी बात मुझसे निकाले वरना चुप रहे। तो अल करीम के नाम को सुनकर चुप रहिए, अपने आप को खामोश रखिए। अल्लाह ने इंसान में तीन जबिलतें डाली हैं, खाने की, पीने की और जिस्मानी ज़रूरत, हर एक को दी है। लेकिन इंसान को अक्ल और शऊर देकर अपनी पहचान दी कि खाने पीने और जिस्म की ख्वाहिशात पूरी करने में जानवरों को ही देख लो कि वो गलत चीज़ों पे नहीं आते। शेर गोश्त खाता कभी घास नहीं खाता, बकरी गोश्त नहीं खाती घास खाती है। तो जानवरों में इज्जत नफ्स है, अपनी तख्लीक की पहचान मौजूद है, तो तुम फिर अहसन तख्लीक होकर तुम अपनी इज्जत क्यों पीछे करते हो। और इंसान तो कबीरा गुनाहों में चढ़ा जाता है, तभी तो अल्लाह ने उसको शरुल बरिया कहा। पिछली ज़िंदगी में जो हुआ कहिए कि अल्लाह हमें माफ़ कर दे। या अय्युल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा असा रब्बुकुम अन युकफ्फिर अन्कुम सय्यातिकुम। अल करीम का सबसे बड़ा करम कि उसने तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ रखा है आपके मेरे लिए। ये उसके करम का इजहार है, सारी ज़िंदगी के गुनाहगार को माफ़ करता, मौत से पहले तक खुला रखता दरवाजे को, क्योंकि अल करीम अल गफूर अल गाफिर और अल गफ्फार भी है। अल्लाह हमें शैतान के तकब्बुर से बचाए, जैसे इज्जत वाला था। आप देखिए कि इज्जत वाला था ना, तो सजदे का इनकार करके जलील हुआ ना, और उसने भी आदम पे जो इतराज़ किया था वो क्या था, काला रईता का हाज़ल्लज़ी करमता अलैया, ये इंसान को तूने मेरे ऊपर इज्जत दी। उसको गुस्सा भी इस पे आया था कि आदम को इज्जत क्यों दी है। तो शैतान कैसे इंसान के ऊपर बात करता है। अल करीम का करम आपको इस दुनिया में बिखरा हुआ दिखेगा, कैसे अल करीम आपके मेरे लिए खूबसूरत कायनात सजाता है। और फिर उसने अल्लाह के नबी को क्या कहा कि वह नकल आला खुल्क नज़ीम, आप तो अखलाक के आला मरतबे पे हैं। कहा ना खुल्क हुल कुरान, आपका अखलाक तो चलते फिरते नमूने थे आप, तो आपको भी अल्लाह के नबी के और अपने मामले पे देखकर अच्छा अखलाक को अपनाना है। तो आखिरी चंद बातें कि अपनी ज़ात को गुनाहों में मुलव्वस ना करें, इस कायनात की तरह हसीन रहिए, अपनी ज़ात की तौहीन से बचाई। कायनात में कितना सुकून है, क्योंकि कायनात कभी किसी की बुराई नहीं करती। गीबत मत कीजिए, गीबत करके आप करीम नहीं रहते, ताना देकर आप करीम नहीं रहते, क्योंकि जो एजाज़ और इकराम इंसान को मिला ना वो गुनाहों की वजह से छिन जाता है। और हर वक्त ये ख्याल रखिए कि शैतान की शरंगेजियाँ जैसे उसको इज्जत से दूर कर गई, आपको मुझे ना कर दें। और अगर कभी कोई नेकी करें और कोई आपका शुक्रिया ना अदा करे, तारीफ़ ना करे, तो घबराइए नहीं, अल्लाह ताला आपको ज़रूर देगा। और आप दुनिया में भी कहा करें कि अल्लाह इज्जत दे, और ये भी दुआ मांगा करें कि अल्लाह हम पे कोई ऐसी बात ना लग जाए, झूठा इल्ज़ाम, कोई प्रोपेगंडा, कोई ऐसी बात कि हम लोगों में आ जाए। अल्लाह हमें दुनिया के अंदर तमाशा ना करना, बुरा ना बनाना, और ख़ास तौर पे दूसरों के ऐब ढांपिए, दूसरों की बुरी बातें मिल जाएं उसकी तशखीर ना करें, एक के बदले में 10 ना सुनाएं, अपना जायज़ा लें क्या वाकई मैं भी ऐसी हूँ। और आखिरी बात, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाह यतकाकुम, अल्लाह ताला आपसे मुझसे राज़ी हो जाए और अल्लाह ताला आपसे मुझसे वो काम ले ले कि जिसके बाद इंसान हकीकत में लोगों के लिए रहमत का जरिया बने। जज़ाकुमुल्लाह खैर।